नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन स्थिर है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है।
एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बातचीत की और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संवाद, तनाव कम करने और शांति पर जोर दिया। ईरान ने इस्लामी कैलेंडर के पवित्र दिनों और नौरोज के उत्सव के बीच इसराइल तथा पड़ोसी खाड़ी देशों के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। इसराइल ने भी ईरान में मनाए जा रहे नौरोज पर्व के दौरान तेहरान पर हवाई हमले किए। 3 सप्ताह से जारी अमरीका और इसराइली हवाई हमलों के बावजूद युद्ध समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच बढ़ते युद्ध और मध्य पूर्व में इसराइल की सुरक्षा के लिए पेंटागन ने $200 बिलियन के अतिरिक्त आपातकालीन फंड की मांग की है। अमरीकी राष्ट्रीय ऋण रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर इसराइल उस गैस क्षेत्र पर हमला करना बंद कर देगा जिस पर ईरान अपनी अधिकांश बिजली के लिए निर्भर है। जारी संघर्ष में अब तक ईरान के 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं लेबनान में 1000, इसराइल में 15 जबकि 13 अमरीकी सैनिक भी संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की और ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, दक्षिण कोरिया की उप विदेश मंत्री पार्क यून जू, भारत में कजाकिस्तान के राजदूत अजमत एस्कारायेव और बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचार साझा किये। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री वैष्णव ने स्टेशन पहुंच, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और सुरक्षा संबंधी सुदृढ़ीकरण में हुई प्रगति का आकलन किया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के बाद उठाया गया है। देशभर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये त्यौहार रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। इस अवसर पर पारंपरिक परिधान पहने लोग ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार आत्मसंयम, दान और जरूरतमंदों के प्रति करुणा का संदेश देता है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को खेतों का दौरा करने और बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का तत्काल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और इटावा समेत करीब 27 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।